अर्पा रेडियो पर सुनते हैं कार्यक्रम बोलती कहानियाँ। आज हम आपको सुनवा रहे हैं शकुंतला ब्रजमोहन की लिखी कहानी संज्ञा टंडन की आवाज में। कहानी का नाम है मधुयामिनी। ऐसी भी मधुयामिनी हो सकती है, इसकी तो सुधा ने कल्पना भी नहीं की थी। सुहाग सेज पर बैठी सुधा सिसक पड़ी। रात के 12 बज गए थे, दिनकर का कहीं पता नहीं था। फूलों की शैया मलिन पड़ती जा रही थी। 1 बजे रात दिनकर ने कमरे में प्रवेश किया। सुधा ने घूंघट खींच लिया। उसे इस प्रकार छुई मुई बनी देखकर दिनकर बेहयाई से हंसकर बोला, वाह सुधा, ये नाटक क्यों कर रही हो? न जाने तुम्हारा यह चेहरा मैं कितनी बार देख चुका हूँ, अब इसमें नवीनता क्या रह गई है? सुधा ने कहा, दिनकर, आज हमारी मधुयामिनी है। दिनकर उसकी खिल्ली उड़ाता हुआ बोला, वासुधा रानी, न जाने कितनी मधुयामिनियाँ मनाकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा, इस बासी मधुयामिनी में क्या धरा है? सुधा ने दिनकर के इस प्रकार के व्यवहार की स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। दिनकर की उपेक्षा उसे खल गई। प्रेम तथा विश्वास की नींव पर टिका भवन उसे धराशायी होता दिखाई दिया। उसका माथा ठनका, ये वही दिनकर है जो विवाह से पहले उसके तलवे सहलाया करता था, विवाह के लिए मिन्नतें किया करता था। इसके 2 मुखौटे हैं, ये आज पता चला है। पहले जब हम प्रेमी प्रेमिका थे तो मेरी वाणी में उसे अमृत घुला लगता था, मेरी आवाज़ में इसे मंदिर की घंटियों का स्वर सुनाई देता था, मेरी एक एक अदा पर ये बिछ बिछ जाता था। पर आज इसकी असलियत का पर्दा फाश हो चुका है। वो जानता है कि मैं अब इसके जाल से निकल नहीं पाऊंगी, क्योंकि बेबस हूँ। आज मैं गर्भवती ना होती तो मुझे ये पापड़ न बेलने पड़ते। ये मेरी मजबूरी का जिंदगी भर फायदा उठाएगा। मुझे न जाने कितने बच्चों की माँ बनाकर मेरी बेबसी का मजा लूटेगा। काश मैं अपने पिता का कहना मान लेती तो ये दिन देखना ना पड़ता। अब मुझे बहुत सतर्क रहना होगा। खून का घूंट पी कर रह गई सुधा। पूरी रात वो इसी सोच में रही कि इस आदमी से कैसे छुटकारा मिल सकता है। सुधा अपने रईस पिता की इकलौती बेटी थी। पैसे में डूबे माता पिता ने उसे पैसे की कमी तो नहीं होने दी, पर प्यार में ज़रूर कमी होती गई। उनके व्यस्त जीवन में सुधा का स्थान न रहा। सुधा को लगा वो उपेक्षित है। इस गलत धारणा के कारण अपने संग पढ़ने वाले लड़के दिनकर से उसकी मित्रता बढ़ती गई। दिनकर ने इस मित्रता का लाभ उठाया। वो उसके संग प्यार का नाटक करता रहा। उस नाटक को सच समझकर सुधा उसके जाल में फंसती गई और विवाह से पहले गर्भवती हो गई। दिनकर गुंडा था। उसके पिता ने इसी प्रकार झांसा देकर उसकी माँ से विवाह किया था। उसके काइयाँ पिता ने उसे सीख दी थी कि किसी प्रकार सुधा को गर्भवती बना दो, जिससे उसके पिता को हारकर दिनकर से विवाह करना पड़े। दिनकर को पढ़ाई लिखाई तो करनी नहीं थी। उसका एक गिरोह था जो तस्करी करता था। दिनकर उनका सरगना था। कई बार वो पुलिस के चंगुर से निकल भागा था। पुलिस में उसका रिकॉर्ड दर्ज था। भोली सुधा इन सब बातों से अनभिज्ञ थी। दिनकर का घर शहर से दूर एक गांव में था। अगर सुधा की हत्या भी हो जाती तो किसी को पता भी ना चलता। दिनकर के माता पिता ने सुधा को हाथों हाथ लिया। वे उस पर इतना प्यार जताते थे कि सुधा सोचती कि इतना प्यार तो उसके माता पिता ने भी नहीं किया। सुधा ने अब असलियत भांप ली थी। उसे अपना मतलब साधने के लिए झूठा नाटक भी करना था। वो सास ससुर की खूब सेवा करती। सबसे पहले तो उसे इस गर्भ से छुट्टी पानी थी। एक दिन सास से ये कहकर कि वो अपनी बीमार सहेली को देखने जा रही है, अगर वो सहेली ज़्यादा बीमार हुई तो वो एक दो दिन रुक कर आएगी। सुधा की सास कम चालाक ना थी। उसने पता कर लिया था कि रीना सुधा की सहेली है, वो और कहीं नहीं जा रही है। वो उस पर ज़्यादा कड़ाई भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि सुधा ही अपने पिता की एकमात्र वारिस थी। सुधा अपनी डॉक्टर सहेली रीना के घर पहुंच गई और उसे अपनी स्थिति से अवगत कराकर ये कहा कि वो इस गर्भ से छुटकारा पाना चाहती है। रीना ने सफाई कर दी और उसके सास ससुर को कहलवा दिया कि उसकी बीमारी के कारण सुधा 2-3 दिन बाद लौटेगी। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। सुधा ने मुक्ति की सांस ली। सुधा का एमए का आखिरी साल था। वो उसे पूरा करके अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। इसके लिए उसने सास ससुर से मिन्नत करके एमए पास कर लिया। आगे से वो गर्भवती ना हो इसका इंतज़ाम भी उसने अपनी डॉक्टर सहेली रीना से करवा लिया। सुधा के पिता जानते थे कि दिनकर किसी भी समय उसकी हत्या करवा कर पूरी संपत्ति का वारिस बनने का षड्यंत्र रच सकता है। वो भी दौड़ धूप में लगे थे। उनकी रातों की नींद हराम थी। वे सुधा को भी सावधान करना चाहते थे, पर सुधा से उसके मायके का कोई न मिल पाए इसकी कड़ी व्यवस्था उसके सास ससुर ने कर रखी थी। सास को पूर्ण आशा थी कि बच्चा होने के बाद सुधा दिनकर को तलाक नहीं दे पाएगी। बच्चे का मुंह उसे कहीं जाने नहीं देगा। इसके बाद धीरे धीरे करके वे उसे कई बच्चों की माँ बनाकर आजन्म बंदी बनाकर रखेंगे। ऐसी अवस्था में वो दूसरा विवाह भी नहीं कर पाएगी। सुधा ने चुपचाप अपनी सहेली रीना की सहायता से नौकरी के प्रयत्न करना शुरू कर दिए। वो स्मार्ट थी, सुंदर थी तथा हमेशा प्रथम आने वाली छात्रा रह चुकी थी। एक दिन जब उसकी सहेली रीना ने खबर दी कि उसे डिग्री कॉलेज में प्रवक्ता का स्थान मिल गया है, तो उसकी खुशी का परावार न रहा। अब जल्द ही उसे इस नर्क से छुटकारा मिल जाएगा। एक दिन उसने अपनी सास से कहा कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, वो अस्पताल जाना चाहती है। उस दिन उसके ससुर की तबीयत खराब थी। इस मौके का उसने लाभ उठाया। सास की लाचारी थी क्योंकि दिनकर फरार था, उसे आज्ञा लेनी पड़ी। सुधा अभिमानिनी थी। माता पिता की सहायता लेकर वो जीवन यापन नहीं करना चाहती थी। फिर ये विवाह उसने माता पिता की अनुमति से नहीं किया था। सुधा ने दिखावे के लिए सास ससुर के पैर छुए। उसका बस चलता तो उनका सिर फोड़ डालती। एक रिक्शा करके वो डॉक्टर रीना के घर पहुंच गई। वहां उसका भाई एसपी प्रदीप भी आया हुआ था। रीना ने प्रदीप को सुधा के बारे में सब कुछ बता दिया था। रीना ने अपने भाई प्रदीप से सुधा का परिचय करवाते हुए कहा, सुधा जो भी सहायता तुम चाहती हो प्रदीप तुम्हारी करेगा। प्रदीप ने कहा, सुधा जी जो भी सहायता आपको चाहिए निसंकोच मुझसे लीजिए। सुधा ने कहा, जब मैं ससुराल नहीं पहुंचूंगी तो सबसे पहले रीना पर आ जाएगी। मैं चाहती हूँ किसी ऐसी जगह मेरा इंतज़ाम करवा दीजिए जहाँ मुझे दिनकर का डर ना रहे, और मेरे माता पिता को खबर करवा दीजिए कि मैं ठीक हूँ। अपनी इतनी बड़ी गलती पर क्षमा मांगने का मेरा तो मुँह ही नहीं रहा। प्रदीप ने कहा, आपके कॉलेज में मैं फिलहाल आपको वार्डन बनवा कर एक सिपाही को खुफिया तौर पर तैनात करवा दूंगा, क्योंकि आपके पति किसी भी समय आपका अपहरण करवा सकते हैं। दूसरी बात है, आपको तलाक के लिए अर्जी भेजनी होगी, उसका इंतज़ाम भी मैं करवा दूंगा। सुधा ने कहा, प्रदीप साहब मैं आपकी अत्यंत आभारी हूँ। धन्यवाद जैसा शब्द आपके लिए बहुत छोटा है। काश मैं आपके कुछ काम आ सकती। प्रदीप ने हंसकर कहा, सुधा जी अभी धन्यवाद तथा आभारी जैसे शब्द अपने पास धरोहर के रूप में रखिए। जब वक्त आएगा तब मैं अपनी धरोहर आपसे वापस ले लूँगा। सुधा को वार्डन बनाकर दोनों भाई बहन निश्चिंत हो गए। दिनकर के माता पिता सुधा के न लौटने पर परेशान हो गए। वो रीना के घर पहुँचे। रीना ने कहा, सुधा तो उनके घर आई ही नहीं। ये सुनते ही दोनों बौखला गए। कुछ दिनों बाद जब दिनकर लौटा तो खबर सुनकर सन्न रह गया। उसे अपनी कल्पना के महल ठहरते नजर आए। वो बदहवास परिचितों तथा अपरिचितों के बीच सुधा को खोजता रहा, पर सुधा की उसको भनक भी नहीं मिली। जिस संबल का सहारा लेकर उसने रंगीन सपने संजोए थे वो छिन्न भिन्न हो चुके थे। पर काटने से पहले चिड़िया उड़ चुकी थी। इधर सुधा छात्रावास में अपने को सुरक्षित महसूस कर रही थी। उसका माता पिता से संपर्क बना हुआ था। वे भी खतरा भांप चुके थे और चाहकर भी सुधा से मिलने नहीं आते थे। अंत में सर्वसम्मति से ये निश्चय हुआ कि अब ज्यादा दिन सुधा का इस शहर में रहना खतरे से खाली नहीं है। तलाक की अर्जी सुधा भेज चुकी थी। वो किसी भी हालत में दिनकर के चंगुल में फंसना नहीं चाहती थी। दिनकर शातिर गुंडा है ये वो समझ चुकी थी। ऐसे में उसे मामा के पास भेजना उचित समझा गया। मामा मामी सुधा के अचानक आगमन से बहुत प्रसन्न हुए। सुधा की माता ने उन्हें स्थिति की गंभीरता से अवगत करा दिया। मामा शुरू से प्रशासनिक सेवा में थे, इसलिए गंभीर स्थिति देखते हुए वो चिंतित नहीं हुए। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग तनिक भी चिंता मत कीजिए, मेरे संरक्षण में सुधा बिटिया का बाल भी बांका नहीं होगा। अगले दिन सुधा के माता पिता लौट गए। एक दो दिन बीत गए। मामी अभी भी सुधा के साथ सहज नहीं हो पाई थी और इधर सुधा अपने व्यतीत को अतीत नहीं बना पा रही थी। चंचल अल्हड़ शोक सुधा अब यंत्रचालित सी मामी के कामों में हाथ बटाती रहती थी। मामा दूरदर्शी थे। मामी और सुधा के चेहरों पर जो घटाएं घिरी थीं, वो हटने का नाम नहीं ले रही थीं। ऑफिस से रोज 7 बजे लौटने वाले मामा आज 4 बजे ही घर आ गए थे। शाम को चाय के टेबल पर आज पहली बार सब आमने सामने बैठे थे, पर अपने ही ख्यालों में खोए से। अचानक चाय का प्याला हाथ में उठाते हुए मामा जी ने कहा, सुधा याद है आज से 8 साल पहले जब हम लोगों का यहाँ तबादला हुआ था तो तुम अपने माता पिता के साथ छुट्टियों में यहाँ आई थी। सुधा ने अपनी नज़र उठाई फिर झुका ली और मंद स्वर में बोली, मामा जी आपसे तो कुछ छिपा नहीं है। 1 साल की यादों की हलचल के बीच चाह कर भी मैं अपने बचपन को ढूंढ नहीं पा रही हूँ। कितनी कोशिशें करती हूँ कि गलती में उठाए गए कदमों की हर आहट को भूल जाऊँ, पर भूल नहीं पा रही हूँ। मैं क्या करूँ मामा जी, आज पहली बार सुधा सुबक पड़ी। मामा जी को इस बूंदाबांदी से राहत मिली। उन्होंने धीरे धीरे बिना एक शब्द बोले अपनी चाय खत्म कर ली। पति के इस व्यवहार पर पत्नी चकित थी, सांत्वना के 2 शब्द भी नहीं। थोड़ी देर में सुधा मुंह धोकर आ गई थी। मामा जी ने स्वयं अपने हाथों से एक एक प्याला चाय सबके लिए डाली और कहना शुरू किया, हाँ तो मैं कह रहा था कि तुमने 8 साल पहले इसी जगह इसी चाय की टेबल पर अपनी एक इच्छा प्रकट की थी। सुधा ने नजरें ऊपर की। मामा जी ने कहना शुरू किया, उस समय शायद तुम 8वीं कक्षा में थी और तुमने कहा था, मामा जी मैं भी आपकी तरह अफसर बनूंगी। और मैंने चिढ़ाते हुए कहा था, ये मुँह और मसूर की दाल, तुझे इतना क्रोध आया था कि प्लेट का समोसा पटक कर तू अपने कमरे में जाकर रोने लगी थी। 2-3 दिनों तक तूने मुझसे बात भी नहीं की थी, पर अब समय आ गया है। फॉर्म ले आया हूँ इसलिए आज ऑफिस से जल्दी आ गया हूँ। तू अपने विषयों का चुनाव कर फॉर्म भर दे, पर अब निर्णय तुझे लेना है। शांत मन से विचार करके ही इस कार्य को करियो। सुधा ने आँख ऊपर उठाई, मामा जी को देखा। बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आँखों ने ही मानो कह डाला, थैंक यू मामा जी। दिन बीतते गए। सुधा अध्ययन में व्यस्त थी। मामी की ममता सहज हो चुकी थी। मामा का मार्गदर्शन उसकी मेहनत में रंग ला रहा था। प्रशासनिक परीक्षा में वो उत्तीर्ण हो गई। साक्षात्कार की परीक्षा का फल आने वाला था। उधर माता पिता के प्रयत्नों से तलाक का केस कोर्ट में आने की तारीख भी निश्चित हो गई थी। अब सुधा के सामने प्रतीक्षा की ऐसी घड़ियाँ थीं कि वो फिर से एक अनिश्चितता की स्थिति में आ गई थी, पर भाग्य ने उसका साथ दिया। उसका चुनाव आयकर विभाग में हो गया था। उसे इसी महीने की 27 तारीख को ट्रेनिंग के लिए जाना था। कोर्ट का उसका मुकदमा 24 तारीख को था। उसके हाथ में सरकारी लिफाफा उसके भविष्य के उत्तरदायित्व और उनसे जुड़ी हुई प्रतिष्ठा की कल्पना से एक ओर तो उसे पुलकित कर रहा था, तो दूसरी तरफ उसके सरल निश्चल प्रेम के अपमान और पीड़ा का प्रतीक वो कोर्ट का कागज मानो उसका उपहास कर रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी जीत की खुशी में गुनगुना उठे या अपने प्रेम की पराजय का मातम मनाए। पर विजय हुई उसकी जीत की। अभी कोर्ट जाने में 2 दिन थे, पर वो अपने वार्डरोब के सामने खड़ी थी। वो एक अफसर थी, उसकी प्रतिष्ठा थी, मर्यादा थी। आदमकद आईने में उसने अपने आप को निहारा, फिर साड़ियों के हैंगरों को उलट पलट कर हल्के नीले रंग की साड़ी निकाली। आज बहुत अरसे बाद उसने अपने परिधान का चयन किया था। 24 तारीख की सुबह घर में अचानक सब लोग गंभीर हो उठे थे, पर वो मुखर हो उठी थी। सुबह से ही नाश्ते खाने की सभी जिम्मेदारी उसने ले ली थी। ड्राइवर को ठीक 9 बजे तैयार होने को कह दिया था। रास्ता लंबा था। कार में सब मौन थे और सुधा अपनी ट्रेनिंग के विषय में सबको उलझाए हुए थी। कोर्ट में विशेष परेशानी नहीं हुई, तलाक की कार्रवाई शीघ्र ही समाप्त हो गई। सुधा और उसके परिवारजनों के चेहरों पर आनंद और संतोष के भाव थे। सुधा ने कोर्ट में दिनकर की एक झलक देखी थी। वो उसे मिलना नहीं चाहती थी। मामा मामी माता पिता बातें करते हुए धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहे थे, पर वो कार के अंदर पहुंच चुकी थी। अचानक शीशे से एक चेहरा झांका, उदास और खिन्न। वो दिनकर था। जिस स्थिति से वो बचना चाहती थी वो अब सामने थी। उसने एक क्षण में अपने को संयत किया और दिनकर को मुंह खोलने के पहले ही मुस्कुरा कर कहा, हेलो दिनकर, कैसे हो? अब हिचकिचाने की बारी दिनकर की थी। बिना आँख मिलाए उसे उत्तर दिया, ठीक हूँ। सुधा ने गुड लक और गुड बाय के लिए मुंह खोला ही था कि खिड़की पट्टी के उसके हाथों पर गर्म जल की बूंदें गिरी। उसने आंख उठाई। दिनकर के चेहरे पर अपराधी जैसे भाव थे, पर एक प्रश्न भी उसकी आंखों में तैर रहा था। इसके पहले कि वह अश्रु बूंदें उसके अंतर मन को सिक्त कर दें, उसने उसके अनपूछे प्रश्न का उत्तर दे दिया। तुम्हारे अस्तित्व के उस नन्हे से अंश को मैंने समाप्त कर दिया था। दिनकर अवाक था। उसकी रही सही आशा की डोर टूट चुकी थी। वो मुड़ गया। घर लौटते समय सब लोग बातें कर रहे थे, पर सुधा मौन ही रही। घर पहुंचकर भी वो अपने विचारों में डूबी थी। अपने भावी जीवन के लिए जिस आत्मविश्वास और शक्ति का संचय करना था, उसी की मानो वो रूपरेखा बना रही थी। रात के खाने पर वो फिर मुखर हो उठी। उसके अंतर्मन की हलचल शांत हो चुकी थी। कितना विरोधाभास था। जब हमारे अंदर हलचल होती है तो हम मूक हो जाते हैं, और जब मन शांत हो जाता है तो हम मुखर हो उठते हैं। मामा जी भी मूड में थे, अपने प्रशासनिक अनुभवों को सुना रहे थे। अचानक टेलीफोन की घंटी बज उठी। फोन सुधा ने उठाया। प्रदीप का फोन था। सुधा का चेहरा पुलकित हो उठा, पर वो अगले ही क्षण संयत हो गई। प्रदीप ने उसे बधाई दी। एक क्षण दोनों ही चुप रहे। सुधा भूली नहीं थी कि मझधार में डावाडोल उसकी जीवन नौका को किनारे तक पहुंचाने में प्रदीप के मजबूत सहारे ने उसे कितनी हिम्मत और हौसला दिया था। उसने अपने ही शब्द काश मैं आपके किसी काम आ सकती उसके कानों में गूंजने लगे। उसने एक निर्णय लिया, और इससे पहले कि प्रदीप कुछ कहे उसने कहा, प्रदीप साहब, अब तो आपकी धरोहर वापस कर सकती हूँ। मैं दिल से आपकी आभारी हूँ। आपने जो मुझे सहारा दिया उसके लिए अनेक धन्यवाद। प्रदीप ने जिस धरोहर के साथ जिस ब्याज की कल्पना की थी उसे कहने का अवसर दिए बिना ही उसने अत्यंत मधुरता से प्रदीप से गुड नाइट कहा और हौले से रिसीवर रख दिया। पुरुष के आकर्षण को ठुकरा देने की क्षमता उसमें आ गई थी। लेखिका शकुंतला ब्रजमोहन के कहानी संग्रह चक्रव्यूह की कहानियों का ऑडियो रूपांतरण। ये थी arparijo.com की प्रस्तुति।